आपको संक्षेप में सुनाया गया, यह भी बतलाया गया कि किस प्रकार से कृष्ण ने उद्धव जी को जो तत्व का उपदेश दिया गया है वही भागवत धर्म है। यदि भगवान की कथा सुनकर भगवान की भक्ति करते हुए कोई बाधा आ जाए, उसे जरा च्युत हो गया अथवा मृत्यु हो गई, भक्ति पूर्ण नहीं कर सका, तो उसमें हानि क्या है? कुछ भी हानि नहीं है। जैसे कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में यदि वह अपने कर्म को पूरा नहीं कर सका, यज्ञ पूरा नहीं हो सका, उसमें मृत्यु हो गई, तो उसका प्रत्यवाय दोष होता है, पाप होता है। किंतु भक्ति राज्य में भक्ति आरंभ करने से बस वहीं से यदि कहीं के पतन भी हो जाए, मृत्यु हो जाए, पूर्ण नहीं कर सका, कोई भी हर्ज नहीं है। इसके हजारों उदाहरण हैं। फिर दूसरे जन्म में सुचिनांग सीमतांगे है, बड़े पवित्र घर में और धन धान्य से पूर्ण घर में उसका जन्म होता है। खूब धनी घर में नहीं, सीमतांग सूचिमतांग गेहे, पवित्र घर में, अर्थात मध्यम वृत्ति में, जहाँ अधिक धन भी नहीं है, दरिद्र भी नहीं है, उच्च कुल में वो जन्म लेता है और फिर वहीं से भक्ति आरंभ कर देता है। भरत महाराज जी थोड़ा सा गिर गए, फिर हानि क्या हुई, दूसरे जन्म से फिर से उन्होंने आरंभ कर दिया। इसी तरह से सब जगहों में समझेंगे, किंतु कर्म मार्ग में यदि पैर फिसल गया, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, तो समझो जैसे उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए भक्ति भगवान के लिए बहुत प्रिय है। इन्होंने देख लिया किस प्रकार से ये भक्ति अपने आप नहीं होगी जब तक कि भक्तों की कृपा नहीं हो, संतों के संग में। संत तो बहुत प्रकार के हैं, ज्ञानी है और योगी लोग हैं संत, किंतु वो संत नहीं, वैष्णव संत होना चाहिए। वैष्णव में भी एकांतिक कृष्ण का भक्त होना चाहिए। जब तक कि कृष्ण का एकांतिक भक्त नहीं होगा, उसके संग से भवसागर को पार करके कृष्ण भक्ति लाभ नहीं हो सकती। ब्रज का भाव तो कदापि उनके लिए संभव पर नहीं है। इसलिए यदि संत यहां पर जो भागवत के अनुसार में कहा गया वो उनके लिए कहा गया जो कृष्ण के प्रति एकांतिक भक्तमान है, ब्रज भाव से भावित हैं, रसिक और भावुक हैं, उन लोगों के लिए कहा गया। विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति आने पर भी तनिक भी उनका चित्त इधर उधर नहीं होता, समस्त विश्व की सारी संपत्ति पा करके नष्ट हो जाने पर भी एक सेकंड के लिए उनके चित्त में कोई भी अशांति नहीं होती, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। उनकी दृष्टि में लाभ हानि जीवन मरण ये सब कोई परमार्थिक कोई अस्तित्व नहीं। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्तों का जो जो परिभाषा दी है, ऐसा भक्त हो, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ऐसे भक्ति को जो आदर करते हैं, अनुशीलन करते हैं। इसी के लिए ये सब उपदेश देने के बाद में उद्धव जी को विदा किया और इतने में दारुक जी आ गए। दारुक माने कौन, कृष्ण के जो रथ चलाते हैं वो पहुंचे, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा जे दारू एक बात करना, 7 दिन के अंदर में मेरी लीला संगोपन हो रही है, ये समुद्र सब द्वारकापुरी को आप्लुत कर देगा, पानी में ला देगा, कोई भी बचेगा नहीं उस समय, इसलिए पहले ही अर्जुन को खबर दो। अर्जुन वहां पर नहीं थे, अर्जुन को खबर देना, अर्जुन आकर के हमारे प्रियजनों को इंद्रप्रस्थ ले जाए, हमारी रानियों को भी इंद्रप्रस्थ ले जाए, हमारे प्रिय लोगों को ले जाएगा, और उनसे कह देना कि अपने बेटे को अपने पौत्रों को वो लेकर के हमारे जो वंश में जो रहेगा अंत में उसको मथुरा की गद्दी पर बैठाएंगे, मथुरा की और ब्रजमंडल की पुनः से खोज होगी, उन स्थानों की प्रतिष्ठा होगी जहां पर मैंने लीला की है। उद्धव जी जाएंगे बद्रिकाश्रम में, वहीं पर विदुर और मैत्रेय का भागवत का यह संवाद जो मैंने उद्धव जी को जो कहा है वही सब वहां पर मैत्रेय जी विदुर को बतलाएंगे, ये कह करके भगवान चुप हो गए। उन्होंने किस प्रकार से लीला संगोपन की इस पर थोड़ा सा हमको प्रकाश डालना है। अधिकांश लोग इसमें मति भ्रम रहते हैं, समझते नहीं है इस चीज को। श्रीमद् भागवत में जहां पर यह प्रसंग आया एकादश स्कंद के 30वें और 31वें अध्याय में जो आया है, बड़े बड़े योगी लोग भी मुनि लोग भी उसमें मति भ्रम में पड़ जाते हैं। उसी को मैं सड़ा संक्षेप में जैसे कि सभी लोग समझ सके मैं बतला रहा हूं। कृष्ण ने देखा, विचार किया, महाभारत के युद्ध में पृथ्वी से भूभार हरण हुआ, जितने राजन्य वर्ग थे पृथ्वी के लिए भार हो रहे थे, पांडवों के माध्यम से उस सबका संहार कराकर और मैंने धर्म की प्रतिष्ठा की, किंतु अभी भी पूर्ण रूप से भूभार हरण नहीं हुआ। अब ये जो जादव वंश है जिसमें मैं आया हूं, उसमें वंश परंपरा की भाव से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे और जो हमारे वंश के जो कुछ लोग हैं मुझको बराबर समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेरे वंश में सभी भगवान नहीं हैं, हमारे प्रभाव से बड़े बलवान हैं, दुर्धर्ष हैं। इसमें कुछ हमारे परिकरों को छोड़ करके कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े दुर्दांत हैं, जदुकुल में आए हैं। इसलिए मैं दो बात करूंगा। मेरे साथ में ब्रजमंडल से गोलोक बिंद बैकुंठ धाम से, अरे उनको हटा दो, तो यहां से दरवाजा नहीं बंद कर दो, जो परिकर लोग बैकुंठ से गोलोक वृंदावन से द्वारकापुरी से अयोध्या इत्यादि से आए थे, वो एक प्रकार के परिकर हैं, उनको अपने साथ ले जाना है। और देवताओं के अंश से और देवियों के अंश से जो मेरी सेवा करने के लिए, हमारी सेवा में कुछ सहयोग करने के लिए आए थे, जैसे इंद्र के अंश से अर्जुन, और ये इंद्र का यह अंश अर्जुन में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से अर्जुन दो प्रकार के हुए, एक द्वारका के परिकर और उनमें मिला हुआ इंद्र का जो अंश था वो। अब कृष्ण चाहते हैं कि चलाकी चतुराई से अपनी योग माया के प्रभाव से इस इंद्र को अर्जुन से, मूल हमारे जो परिकर जो अर्जुन है उनमें से देवताओं का अंश रूपी जो इंद्र का जो अंश है उसको निकाल करके अलग करूंगा, देवताओं को स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, देवियों को स्वर्ग में पहुंचाऊंगा, और अपने परिकरों को जहां जहां हमारे परिकर हैं, कोई अयोध्या से आए हैं, कोई बैकुंठ से आए हैं, शिशुपाल दंतपक्र कहां से आया था, जयविजय आया था, अर्जुन कहां से आए और सुबल अर्जुन कहां से आए, सुबल अर्जुन मधुमंगल ये सब कहां से आए, ब्रज से आए। हनुमान जी कहां से आए, हनुमान जी उस लीला में कौन है, कपिध्वज के रूप में है, भीम के रूप में है, तो ये भीम में वो प्रवेश किए हुए हैं। भीम में पवन भी है, पवन को अलग छांट करके स्वर्ग में भेजे। इस तरह से जो जो देवताओं के अंश से और देवियों के अंश से आकर के राधा जी की सेवा के लिए जो थे इनको अलग छांटेंगे, ऐसे छांटेंगे जो लोगों को पता न चले और हमारा काम हो जाए, जो जहां से आया है वहीं पर पहुंच जाए, किंतु काम सावधानी से करूंगा, लोग न समझ सके, ऐसा विचार करके। विडंबनम, माया विडंबनम उसमें लिखा है और उसमें एक नट का इंगित किया है, उन्होंने ऐसी लीला की। जदु के जो जितने वंश में हैं करीब करीब कुछ को छोड़ करके कृष्ण के परिकर हैं, और कृष्ण जैसे ही हैं, सच्चिदानंद में है। उसी में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपके वंश में सभी तो आपके परिकर हैं करीब करीब, तो उनको ब्रह्म श्राप क्यों लगा, ब्राह्मणों ने श्राप क्यों दिया। अब ब्राह्मण तो जानते हैं, तत्वविद होते हैं, समस्त सिद्धांतों को जानने वाले होते हैं, और कृष्ण के वंश के जादव लोग ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं, तो फिर इन ब्राह्मणों ने उनको क्यों श्राप दिया, उन पर श्राप कैसे लग गया यदि सच्चिदानंद शरीर है और गोलोक वैकुंठ के कृष्ण के परिकर हैं, श्राप कैसे लगा। तो उसी के लिए बतलाया, लोक विडंबनम, जैसे एक नट है। अब उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने व्याख्या से इसी नट एक शब्द की व्याख्या की, कि जिस प्रकार से तो पहले ये बतलाऊं अभिशाप वाला प्रश्न, अभी नहीं बतलाया तो कृष्ण की अब लीला संगोपन करने की इच्छा हुई और जो बात मैंने कही उसको अलग अलग छांट करके उनको भेजने की चेष्टा हुई, इच्छा हुई। उन्होंने भक्तों के हृदय में प्रेरणा दी। कौन भक्त? शाम्ब इत्यादि, उनके जो परिकर हैं भगवान के लीला परिकर और सच्चिदानंदमय शरीर वाले हैं, उन लोगों के हृदय में कुछ प्रेरणा दी। जैसे जय विजय के और सनत कुमार के हृदय में प्रेरणा दी, वैसे प्रेरणा दी। इन लोगों ने क्या किया? शाम्ब को जो बहुत ही ब्रज में वहां पर सबसे द्वारकापुरी में सुंदर थे राजकुमार, 16 वर्ष की उनकी उम्र थी, उनको एक महिला जैसा सजाया, नवीन सेंदूर दे दिया सिर में, केस तो कुछ बड़े बड़े थे, घूंघट से उसको ढक दिया और नवविवाहिता उसको सजाया और पेट में कुछ कपड़े लत्ते बांध कर और उसको ऊंचा कर दिया, उसको तवे से ढक दिया जैसे मालूम न पड़े, और उसको लेकर के गए पिंडारक तीर्थ में। ले जाकर के ऋषि लोग वहां पर जुटे हुए थे, किस लिए? कृष्ण देखा जी, कृष्ण यहीं पर हैं, द्वारका में हैं, पासी में पिंडारक तीर्थ है, यहीं पर आकर के हम लोग कुछ भगवत भजन करेंगे। और उन्होंने किसी प्रकार से जान लिया कि उनके लीला संवरण का अब समय हो रहा है, इसलिए नारद ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कवि, हवि, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध इत्यादि बड़े बड़े ऋषि, सनक सनंदन, सनत कुमार इत्यादि, उसके बीच में दुर्वासा जैसे भी व्यक्ति, सब ब्रह्मवादी ऋषि लोग वहां पर उपस्थित थे जो भूत भविष्य को सबको जानते हैं। भगवान का दर्शन होना जरा सहज है, इन लोगों का बड़ा कठिन है। ऐसे ऋषि महर्षि वहां पर उपस्थित होकर के कुछ हरि कथा चर्चा कर रहे थे और इसी बीच में इन लोगों को प्रेरणा हुई, वहां पर पहुंचे पिंडारक तीर्थ में, समुद्र के किनारे, समुद्र से करीब आध माइल की, एक माइल थोड़ा सा जमीन की तरफ में। जब इन लोगों ने एक बार नहीं, दो बार, तीन बार ऋषियों से कहा, ओह महर्षिगण, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब को जानने वाले हैं, आप लोगों के लिए जो लोग कुछ हम पूछ रहे हैं वो तो बहुत थोड़ी सी बात है, ये बड़ी लज्जाशील नववधू है, अभी कुछ दिन हुए, ये पहला इसका गर्भ है, आप कृपा करके ये बतलाइए कि इस ये पुत्र की अभिलाष, ये पुत्र चाहती है और जानना चाहती है कि हमको क्या पुत्र होगा कि कन्या होगी, किंतु चाहती है पुत्र, सभी लोग चाहते हैं, ये कुछ ऐसा ही है, बहुत कम लोग होंगे जो लड़की चाहते हैं, तो ये पुत्र की अभिलाषा आप बतलाइए तो इसका पुत्र होगा कि कन्या होगी। एक बार कहा, दो बार किया, तीन बार कहा, कुछ उपहास की, उपहास मैंने समझते हैं ना, दिल लगी जैसे मजाक उनका उठाया। देखा जी, वैष्णव लोग तो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं, पढ़ना लिखना तो अधिक जानते नहीं, अरे भक्त लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं, भगवान को अपना तन मन सब कुछ दे देते हैं। गैया को, अपने बछड़े को प्यार करने में कोई विद्या इत्यादि की, संस्कृत और अनुस्वार विसर्ग इत्यादि की कसरत की जरूरत नहीं होती, प्रेम उनमें होना चाहिए, ममता होना चाहिए भगवान के प्रति। पढ़ने लिखने से, विद्वता से, बुद्धि के कसरत से भगवान को नहीं पाया जा सकता, प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है। तीन लोगों ने सोचा जी, ये तो ऐसे मूर्ख हैं जो अपने घर में अपनी स्त्री बाल बच्चों को और धन संपत्ति को भी भोगना छोड़ करके मूर्ख जैसा भिक्षा मांगते हैं, 10 दराज बजाते हैं, हम लोगों के पास में आते हैं, ये पढ़े लिखे कुछ विद्वान नहीं है, केवल ऐसे ही ध्यान लगाते हैं, ऐसा समझा, जैसा आज करके लोग करते हैं। पहले ही उन लोगों ने, कृष्ण ने यह समझ लिया था और ऋषियों ने समझा जाए, ऐसा ही दिन आएगा कुछ दिनों के बाद में, 5000 वर्ष के बाद में, 4000 वर्ष, अभी 5000 हो रहा है, अभी ठीक वैसा ही हो रहा है, पहले से समझा था। इसलिए सावधान करने के लिए, इन परिकरों के द्वारा भगवान ने शिक्षा देने के लिए इन लोगों को उनके पास भेजा था, इसलिए जाकर के ऐसा ही कहा, कुछ उपहास की। उन ऋषियों में से अब कौन थे ये तो लिखा नहीं, दुर्वासा जी थे या नारद जी हैं या और कोई हैं, मैं अच्छा इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए और भविष्य के लिए भी शिक्षा दी जाए। यदि कोई बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी, दरिद्र व्यक्ति भी, काला कलूठा व्यक्ति भी, जैसे भी हो, भगवान का नाम का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो सबसे बड़ा साधु है। इस चीज को समझो, कोई गुण नहीं है, किंतु जब ही मुकुंद का आश्रय लिया त्यों ही क्या हो जाता है, समस्त गुण उसमें आ जाते हैं। सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महन गुणा मनोरथेन धावतो असत भई। उनमें जो कि भगवान का भजन नहीं करते हैं, मुकुंद का भजन नहीं करते हैं, साधु संघ में आकर के, उनमें विश्व ब्रह्मांड का समस्त गुण होने पर भी वो गुण बेकार के हो जाते हैं। और साधु संतों में कोई गुण न रहे, केवल भगवत भक्ति यदि रहती है, तो उसी से समस्त गुण वहां पर देवताओं के साथ में सब आ जाते हैं। इसलिए भक्तों का निरादर नहीं करना चाहिए, उसी के लिए ये शिक्षा के स्वरूप में पेश कर रहे हैं। पेश कौन कर रहा है? अभिनय करने वाले भगवान के एक तरफ ऋषि मुनि है, और दूसरे में कौन है? कृष्ण के परिकर लोग, सांब इत्यादि बहुत से यदुवंशी लोग हैं। ये इनमें दोष नहीं है, किंतु शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा तो उनमें से एक को क्रोध हो गया। क्रोध होने पर उन्होंने कहा, अच्छा उपहास कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि नहीं, तो इसको बेटा नहीं होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से एक मूसल होगा जो जादुओं के वंश को ध्वंस कर देगा। जब ही ऐसा कहा गंभीर रूप में, एकदम डर गए बच्चे, वहां से बच्चे निकल करके और ऋषियों से थोड़ा सा दूर होकर के अब डर के मारे पेट खोलने लगे। उसका जब कपड़े खोला तो देखा उसमें छोटा सा एक मूसल, इतना मोटा, एक तरफ में लोहा का शाम और एक तरफ में मूसल अधिकांश तरह से बबुल के डालों का बनता है, खूब ठोस और मजबूत होता है। वो गिर पड़ा, अरे ये तो सचमुच में ये तो महाभयंकर सांप हुआ, अब चलो हम लोग चले, कृष्ण को बतलाना नहीं है, नहीं तो कृष्ण बिगड़ जाएंगे। महाराज उद्धव जी के, उनके उग्रसेन के, इसलिए वहां पर सुधर्मा सभा बैठी थी, उसमें समस्त यदुवंशी लोग एकत्रित हुए थे। उग्रमा सेन महा एक बड़े सिंहासन पर बैठे थे, किंतु कृष्ण और बलराम किसी कारण से वहां नहीं थे। उन्होंने उग्रसेन से जाकर के कानों में सब कुछ कहा, हाय हाय ये तो बहुत अनर्थ हुआ, तुम लोगों ने बहुत ही ये अनर्थ और अपराध किया, अब इससे बचना बड़ा भारी मुश्किल है, तो अभी मैं इसके लिए कुछ प्रयास कर रहा हूं, भगवान ही तुम्हारी अब रक्षा करें, अब हम लोगों की बस की बात नहीं है। नौकरों को बुला करके कहा, इस मुसल को जला दो। मुसल को तो जलाया, जो राख हुआ उसको किसी चीज में रख लिया, और जो लोहे का जो शाम है जिसे कि कूटा जाता है, जिसे कि क्षय न हो, लोहे ले वाला ही भाग क्षय हो, इसलिए उसको रगड़ रगड़ करके धूल जैसा कर दिया, किंतु अंत में जो था इधर से घिसा उधर से घोचा, वो त्रिकोण बन गया, छोटा सा त्रिकोण, अब वो हाथ में पकड़ में नहीं आया। इसलिए उन सबको साथ में मिला करके किसी कागज में या किसी में रख करके कहा, जिसे बहुत दूर इसको फेंका वो समुद्र में, नौका ली और समुद्र में गए और इसको बीच समुद्र में लेकर के उसे डुबा दिया। किंतु समुद्र जी का ये नियम है कि किसी की वो किसी का उद्धार नहीं रखते, जो चीज दो उसको शुद्ध समेत लौटा देंगे। दूसरी बात होनी थी कुछ और, इसलिए वह राख और लोहे का रगड़ा हुआ जो धूल थी वो समुद्र के तरंगों पर बहती बहती आकर के जमीन में लग गई, और वो जो त्रिकोण सा छोटा सा जो लोहे का खंड था वो बहुत तीक्ष्ण धार वाला होकर के को समुद्र में पानी में गिनवा, इतने टप से एक मछली ने उसे निगल लिया। निगलने के बाद वो तो बहुत बड़ा भारी विशाल वन हो गया, उसको कहते हैं एरका वन। एरका कहते हैं मुंज का, मुंज जैसा पतलो एक होता है, पतलो उसके धार जैसी पत्तियां होती हैं, उसे मड़ैया इत्यादि भी बन, विवाह में उसका मंडप उसी से होता है। तो वो बन गया विशाल और उसमें बड़ी तीक्ष्ण धार होती है पत्तों में। इधर जो मछली निकल गई, मछुओं के जाल में पड़ी और वो निकल आई। मछुआ उसको बेचने के लिए उसका पेट चीरा, उसमें से ये निकला चमकीला सा थोड़ा सा लोहे का भार। बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने अपने बाण में लगा करके ठोक दिया, एक नुकीला भाग इधर आ गया, दो ऐसे हो गए, ठोक दिया बाण के जैसे ऊपर लगा दिया। अब वही जरा व्याद जहां कृष्ण अभी उपदेश दिया पहले उद्धव जी को और मैत्रेय इत्यादि को, और पीछे से दारुक जी को, और इधर में बहुत विशाल रूप से ये होने लगा, भूमिकंप होने लगा और तरह तरह के अपशकुन होने लगे। कृष्ण ने सबको लेकर के कहा जे चलो पंडारक क्षेत्र में, वहीं पर चल करके दान पुण्य करेंगे और इसका शास्ति स्वास्थ्यायन करेंगे। इसलिए सबको लेकर के वहां पर उपस्थित थे, कुछ लोगों को वहां पर छोड़ दिए, वृद्ध इत्यादि को, और इन लोगों को लेकर के आए। किनको लेकर के आए? उनके जो परिकर थे उनको, अब यही उनको छटनी होनी है और अपने अपने लोग को जाने हैं, लेकर के आए। उस समय में बहुत दान पुण्य किया, जो कुछ ले आए थे सबको दान कर दिया। जब दान इत्यादि संपन्न हो गया तब मैरेय नामक एक सोम नहीं मैरेय नाम का एक देशी शराब जैसी ही चीज उन्होंने पी ली। शराब का क्या नतीजा होता है पीने में, इसका भी कुछ उपदेश देने के लिए ऐसा किया, शराब मत पियो नहीं तो तुम्हारा वंश सब ध्वंस हो जाएगा। इस शिक्षा देने के लिए उन्होंने वो सब तो पिया। कृष्ण और बलदेव जी उनके साथ हैं किंतु ये उनमें भाग नहीं लिए, वो दूर अलग खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद में एकदम उन्मत्त हो गए। जो एक माता पिता से उत्पन्न है भाई भाई से लड़ पड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया, किसी का हाथ उसे लग गया ऐसे ऐसा क्यों किया, तो तत क्या हो गया, अच्छा तो देखो बस थप्पड़ थप्पड़ इधर से होते होते तलवार गोली तलवार और बल्लम धनुष बाण उठाया और लड़ने लगे। उस समय भाई भतीजा बाप बेटा भाई भाई ससुर और दामाद जितने थे सब लड़ने, ये कौन देखा, ये जो हो रहा है ये साधारण लोग देखे, भक्त ने नहीं देखा। यही लोक विडंबना है। अब लड़ कर करके परस्पर पर सभी लोग मर गए। कृष्ण ने मना किया, कृष्ण और बलदेव जी ने उन पर भी वो लोगों ने आक्रमण कर दिए और कृष्ण से भी लड़ने लगे। कृष्ण ने भी जब ये सब चीजें समाप्त हो गई, अपना तलवार और गदा धनुष बाण सब खत्म हो गए, एरका जो वन में था उसको उखाड़ा और उसी से लड़ा। वो उस समय में वज्र हो गया उन देवताओं उनके ऋषियों के अभिसंपात से, जिस पर छोड़े बाद गति से वो मर जाता था, उसको कोई बचाने वाला नहीं, कोई किसी पर वो छोड़ दे। कृष्ण ने भी बलदेव जी ने भी उखाड़ लिए और उखाड़ करके अपने वंश में सब लोग मर कर करके बलदेव जी पासी में सरस्वती नदी थी जो समुद्र में गिरती है उसके किनारे पर बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। उनके सिर से एक सफेद बहुत सर्प मोटा निकला और वो उत्तर की तरफ में चला गया। जब चला गया तो कृष्ण ने देखा जो थे बलदेव प्रभु भी अंतर्ध्यान हो गए, तब वो खुद जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे पास ही में, उसी को वो कहते हैं सोमनाथ जी का जहां मंदिर है, कौन सा स्थान, प्रभास। उस समय बहलिए ने वो बाण मारा, कौन सा बाण मारा जिसमें और कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके वहां गिर गया। बहेलिया दौड़ करके जल्दी से आया, उनके चरणों में गिर गया। हमने सोचा जो ये हरिण है और उसके मुख की ये जीभ है लाल लाल, मैंने पैरे के तलवों को ऐसा समझ करके, अब प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। उन्हें कहे ठीक है तुम्हारी रक्षा करते हैं। स्पर्श करने के साथ ही साथ स्वर्ग से वहां से बैकुंठ से विमान है, उसको बैकुंठ की गति दे दी कि क्योंकि तुम हमारे लीला में सहायक हो गए। जब वो बैकुंठ चला गया तब कृष्ण ब्रह्मा इत्यादि देखते को देवताओं के देखते देखते आश्चर्य गति से वो गोलोक बैकुंठ को गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया। अब यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक की टीका में जो नट शब्द है और ये जो लीला है इसको दिखलाते हुए कह रहे हैं, जो कि जमुना के जल में विष हो गया था कालकूट, और वह कालकूट विष वाला काली अपने सहस्र फणों से कृष्ण के यहाँ पर वस्त्रक्षल में यहाँ पर वहाँ पर चारों तरफ में काटा, विष से भर दिया तो कृष्ण नहीं मरे। एक लोहे में थोड़ा सा विष लगा दिया, वो पैरों में छू गया तो कृष्ण मर गए, ये कभी संभव पर नहीं हो सकता है। इसके अंदर में कुछ और बात है। ये अज्ञानियों को, साधारण लोगों को जो भजन नहीं करते हैं, विमुख हैं, असुर टाइप के व्यक्ति हैं, इन लोगों को मोहन करने के लिए ये बतला गया। असल में यहां पर बात कुछ दूसरी है। अरे सर, भगवान के जितने भी शरीर हैं वो सब कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद में यदि जीव का स्वरूप केवल चित है थोड़ा सा आंशिक, तो वही न आत्मा नैनंछिदंति शास्त्राणी नैनंदहति पावक, उस आत्मा को जबकि ये बाण धनुष कुछ नहीं कर सकते, आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, अस्त्र शस्त्र स्पर्श नहीं कर सकता, और उसको भला एक लोहे का बाण का वो भी थोड़ा सा विष, भगवान को मार दिया, भगवान खत्म हो गए, ऐसा कभी मत सोचो। ऐसा जो सोचते हैं समझते हैं वो असुर दैत्य दानव है, उनका भक्ति से कोई भी सुखदेव गोस्वामी ने, सुत गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी तो चले गए हैं, अब इसको उपसंहार कौन कर रहा? सुत गोस्वामी जी वो बतला रहे हैं। देखो भगवान कभी मरते नहीं, जीवात्मा ही नहीं मरती, उनका जन्म और मरण नहीं है, तो इनका जन्म कैसे है? जोग माया के प्रभाव से एक जैसे नट अपना जोग माया के, वो तो साधारण माया से जो जादू से कुछ ऐसा दिखला देता है, तो भगवान रूपी नट की तो बात क्या। देखो एक नट, नट माने क्या? जादूगर अपने पुत्र, अपनी स्त्री, अपने नाती पर नाती, बहुत से लोगों को साथ लेकर के आया, महाराज के दरबार में पहुंचा। महाराज हमने बहुत से अपने गुरु से कलाएं सीखी हैं, वो कलाओं को आपके सामने हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। अजय ठीक है करो, हमको कुछ पुरस्कार देंगे तो अत जरूर देंगे, तो हम एक नहीं मैं 2-3 लीलाएं दिखलाऊंगा। तो मैं पहला प्रदर्शन करके दिखलाने के बाद में आपसे कुछ पुरस्कार मिलेगा, तो उससे और उन्नत दिखाऊं उससे भी अधिक पुरस्कार आपको दे रहा हूं, हाँ हमको सब मंजूर है। कहे ठीक है। बस वो अकेले महाराज के सामने राजसभा में प्रवेश किया और अपना जादूगरी विद्या दिखलाने लगा, कला दिखलाने। देखा जी वही जादूगर अपने से 10-20 हजार जिन्हें कितनी मूर्ति एकदम धारण कर लिया, आनंदकारी तो बड़ा आश्चर्य बात। थोड़ी देर में क्या दिखलाया, जितनी मूर्तियां थीं उसी के समान सभी बन गई, जैसे ये करता है वैसे वो सब मूर्तियां करने लग गई। राजा बड़े, इसके बाद उस लीला को संवर्ण कर लिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। ये इसके बाद में राजा ने कहा जी बहुत सुंदर, तो उन्होंने हार इत्यादि उसको और बहुत से मोहर इत्यादि उसको दान दिया। थोड़ी देर के बाद में ही उसके जितने लड़के थे, लड़कियां थीं, जमाई थे और पौत्र इत्यादि थे, सभी मिले वहाँ पर चले आए और वो कहे मैं लूँगा तो मैं लूँगी। इस तरह से सभी परस्पर झगड़ने लगे और सबके हाथों में तलवार। थोड़ी देर के बाद में देखा जी सभी लड़ने लगे, सब लोगों ने देखा जी ये लड़ रहे हैं, राजा रानी सब लोग, और लड़ते लड़ते ऐसा लगे एक क्षण के अंदर में सभी खत्म। जब खत्म हो गए तो जो नटिनी थी उसने वही तलवार को उठाकर झट अपना गला काटा और जो नट था उसने भी अपना गला काटा। जब रह करके हम क्या करें, बस वो भी मर गए, सब ढेर बन गए। अब तो राजा और रानी और जितने सभासद बोले यह है ये क्या हो गया, बड़ा विभत्स कांड हो गया, कहाँ हम लोग देखने के लिए खुशी खुशी में आए थे और ये क्या उस दिखला करके सभी मर गए, ये हम लोगों के कारण ही हुआ, हम लोगों ने इनको पैसा टैसा और ये हार दिया इसलिए ऐसा हो, फेंकवा दिया सबको जो मरे पड़े थे, दरबार साफ हो गया। किंतु बड़े दुखी होकर के घर में लगे। चार दिन के बाद में एक खत मिला उनको, खत मैंने क्या चिट्ठी मिली, पत्र, महाराज हमने जो पहली लीला दिखलाई आपने तो बहुत लंबा चौड़ा पुरस्कार दिया, किंतु अंतिम में जो हमने वो खेल दिखलाई इतना सुंदर बढ़िया, तो उसका तो पुरस्कार आपने दिया नहीं, कोई नहीं मरा हमारे सब, हम जैसे के तैसे घर में आए हुए हैं, आपको प्रतीति और विश्वास नहीं है तो हमारे घर में पधारिए आप देखिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, रानी को भी और मंत्रिमंडल को भी, वो सभी लोग मिलकर के रथ में बैठ करके उसके घर में पधारे। ज्यों ही जाते हैं त्यों ही जो मरे हुए थे नट नटनी बच्चे सब फूलों का हार लेकर के राजा रानी का अभिनंदन किया, जो महाराज हंसते हुए जो मल हम लोग मरे नहीं, ये तो जादू की एक थोड़ी सी कला थी हमने दिखलाई, नजर बंद था, वही हार वही सब है। यदि एक नट ऐसा कर सकता है, वो भी कुछ नहीं हुआ, आंख को बांध करके एक मैसमेरिज्म जैसा कर देते हैं, तो ये भगवान समस्त नटों के, ब्रह्मा इत्यादि शंकर नट हैं, इन सब नटों के भी मूल नट, यहाँ तक कि नारायण और इत्यादि सब इनके अंश और कब कितने सब कला हैं, वो नटवर जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं, वो इसी से समझो। क्या वो नजरबंद करके जाने के समय ऐसी लीला नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्होंने एक जादू जैसा ही एक जोग माया का प्रभाव दिखलाया। उसी लड़ाई के समय में ही, इतने में कुछ लड़ाई नहीं, वो लोग देख रहे हैं, किंतु वो जितने थे वो सब उसी समय निकाल करके देवताओं के अंश को, देवियों के अंश से उनको तो स्वर्ग में भेज दिया। इसको केवल ब्रह्मा शंकर और देवताओं ने कुछ देखा और उनके जो परिकर थे उनमें से निकाल करके जोग माया के प्रभाव से द्वारका वाले को द्वारका में, ब्रज वाले को ब्रज में, सबको संस्थापित कर दिया। यह बात किसी को मालूम नहीं है। ब्रह्मा और शंकर उनकी गति देख करके फूल की वर्षा करने लगे, समझ न सके ये कहाँ गए, किस रूप में गए, देवताओं की तो बात ही क्या। बड़े बड़े संत जो हैं नारद प्रभृति, उन लोगों ने झलक के रूप में देखा जे प्रभु जी ने अपने लीला संवरण की, माने अंतर ध्यान होकर के साक्षात शरीर से सरसर करके चले जा रहे हैं अपने समस्त परिकरों के साथ में। इसलिए यह लीला साधारण लोग जो कि भजन नहीं करते हैं, भजन से विपरीत हैं, इन लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा किया। इसीलिए चैतन्य महाकृष्ण ने कोई वंश में नहीं रखा। प्रभुपाद जी ने इसकी टीका टिप्पणी की है बहुत सुंदर रूप में। क्या टीका टिप्पणी की, आदि कारण पर गए, सांब जो स्त्री का वेश धारण किया था वो साधु संतों को ठगने के लिए थी, तो जो लोग सहजिया वेश धारण करके पुरुष होकर के भी मूछ मुड़ाकर केश रख करके सिंदूर लगा करके कानों में बल्ली और चूड़ियां पहन करके स्त्रियों का कपड़ा धारण करके अपने को कहते मैं ललिता सखी हूं, ये ठीक वैसे ही अपराधी। इस चीज को समझो। या भजन, या जो भजन है ये भजन नहीं, ये उपहास स्वरूप है, ये अपराधमय चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो भजन मार्ग में बहुत ऊपर की चीज है जो उस तरह की भावना होती है। एक आदमी पुरुष हुआ, स्त्री सज करके ऊपर से मोछ मुड़ा लिए और स्त्रियों को जैसे कपड़े पहन लिए चूड़ी, तो वो स्त्री बन जाएगा? उसका मन स्त्री बन जाएगा? उसके भाव भाव तो होंगे नहीं, इसलिए दूसरों के प्रति वो अन्याय करता है। इसलिए स्त्री वेश बनाने वाले या पुरुष, स्त्रियां पुरुष पहन, वो बनती हैं क्या? दादाजी भैया जी बनती हैं, पगड़ी बांध लेंगी, कपड़े पहन लेंगी। अरे जो असल चीज है उसको कहां से छिपाएगी, या तुम कहां से छिपाएगा स्त्रीत्व और पुरुषत्व? इसलिए भजन करो ठीक से महाप्रभु की धारा में। इसी को गौर नागरीवाद और क्या क्या कहते हैं, सखी सहजिया, सखी भेकी इत्यादि, इधर में नहीं जाना है हम लोगों को। इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, प्रभुपाद ने लिखा है इसी में, कृष्ण ने वंश का ध्वंस ऊपर से जो दिखलाया किस लिए दिखलाया? ब्राह्मणों का अनादर किया ना, ये ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण? नारद जी ब्राह्मण थे, कौन कुल में नारद जी आए? ब्राह्मण कुल में आए थे। अच्छा व्यास आए थे ब्राह्मण कुल में? वो तो आए थे क्षत्रिय कुल में। नारद जी आए दासी पुत्र माने शूद्र कुल में। वशिष्ठ जी कल्स से पैदा हुए,
गौतम हिरण से,
और गौतम जी तो हुए हिरण से, ऐसे ही सब निकले। इनकी जाति क्या है? भगवान का जो भजन करता है वो अच्युत गोत्र होता है। ये भक्त ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है, जिस ब्राह्मण में केवल ऊपर से ये जनेव माने सूते का अभिमान होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण का कोई कर्तव्य नहीं करते, मांस मछली प्याज लहसुन गोश्त खाते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, ये शूद्र और चंडाल से भी अधीन है। और जिस कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति हो भगवान का भजन करता है, ब्रह्म को जानता है, तो वो ब्राह्मण है। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो जो लोग अपनी वंश परंपरा से कहते हैं कि मैं अद्वैताचार्य का वंश हूं, मैं नित्यानंद वंश अवतंश शिरोमणि, ये वंश अवतंश शिरोमणि नहीं है, ये दैत्य दानव है। इसीलिए कृष्ण ने अपने वंश को ऊपर से ध्वंस जैसी लीला की, महाप्रभु को कितने बेटे हुए? अरे बेटा होने के पहले तो वो चले गए। नित्यानंद के कितने बेटे थे? एक थे वीरभद्र, उन्होंने उनको कोई बेटा इत्यादि नहीं रहा, उन्होंने कोई संतान ही उत्पन्न नहीं, वंश को अपना वहीं तक समाप्त कर दिया। और द्वैताचार्य को वंश में 8 लड़के थे, उन्होंने एक को छोड़ करके अच्युतानंद को उन्होंने भगवत भक्ति देख करके उनको अपनाया, और बाकी को अपने वंश से तलाक दिया, तुम हमारा वंश का नहीं है। और वही लोग कहते हैं अच्युत ने विवाह नहीं की, तो उनका वंश भी कहां रहा? इसलिए भगवान और भगवान के भक्त लोग वंश इसलिए नहीं रखते, पुत्र और संतति इसलिए उत्पन्न नहीं करते जे इन्हीं के नाम पर अत्याचार अन्याय करेंगे और जगत को ठगेंगे। ये मैं अद्वैत वंश का हूं, मैं नित्यानंद वंश का हूं, मैं महाप्रभु का परिवार हूं। असल में महाप्रभु का नित्यानंद का परिवार कौन है? जो नित्यानंद के आदर्शों को, अद्वैत के आदर्शों को, महाप्रभु के आदर्शों को लेकर के भगवान का भजन करता है, वो उस वर्ष का है। नित्यानंद प्रभु का, अद्वैत जी का ये परिवार, आप सभी लोग जो भगवान का भजन करते हैं ये चैतन्य महाप्रभु के परिकर है। शुद्ध ब्राह्मण वो हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को तत्व से जानते हैं। इसलिए कृष्ण ने ऐसी ऊपर से लीला की, और भीतर में तो वो रहस्य है। अब इसके बाद में श्रीमद् भागवत का कोई है नहीं जो उनको जरा हटाए, करीब कितना 7 हो गया है,
7-10
हुआ है। अच्छा अब सुत गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत का मधुरेण समापयति, मधु रूप में उसकी समाप्ति कर उपसंहार करते हुए कर प्रणाम के माध्यम से कृष्ण की समस्त लीलाओं को विशेष करके ब्रज की लीलाओं को उन्होंने प्रणाम किया। विशेष करके कृष्ण की रासलीला वेणु गीत जुगल गीत गोपी गीत भ्रमर गीत इत्यादि को प्रणाम किया। इनके साथ साथ में और बाल्यकाल से लेकर के जितनी भी लीला है उनको स्मरण किया। स्मरण करने के बाद में सोच रहे हैं अब केवल 15-20 मिनट या आध घंटा का समय है, इस समय उनकी मैया वहां पर उपस्थित हुई। उत्तराजी उपस्थित होकर के बोले, जब बेटा मैं क्या कहूं, स्त्री जाति की स्वभाव हमारा, तुमने जो ये जो सुना सुखदेव गोस्वामी से ये सब हमारे समझ में कुछ आया नहीं, सरल सहज तरीके से हमको ये बतलाओ उसका सार, जैसा रूप से हम धारण कर सकें वैसा अपने जीवन को बना सके। बड़े प्रसन्न हुए। वो मैं समाधि लगाने वाला था तो समाधि से अच्छा हुआ जब मैं भगवान की कथाओं को स्मरण करते हुए अंत समय अपना बिताऊंगा। उन्होंने दो उपाख्यान बतलाया, एक पहला नारद जी का और दूसरा बतलाया गोप कुमार का।